अर्हन्ताडं नमोऽस्तेऽर्थाडं नमो आयरीयाडं नमो उभयचायाडं नमो लोये सर्वतामूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिं जैनं जयतु शान्तिं जैनं जयतु शान्तिं दीन भुवन में सार दीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के। हम लोग तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं। इसका अठवां छंद था सकल द्रव्य को वास चास्म सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निष्ठन सो व्यवहार काल पर मानो यो अजीब अब आश्रव सुनिए मनवच काय त्रय होगा मिथ्या अभिरति अरु कषाय परमार्थ सहित उपयोगा। तो हमने जीव तत्व की पहले बात कर ली सात तत्वों के अंदर, अजीव तत्व की भी बात हो चुकी है, अजीव तत्वों में पांच द्रव्यों की बाकी की बात हो गई है और हम लोगों ने आश्रव की बात शुरू करी थी। अभी तक ये जो सात छंद हो गए इसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, कोई भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं समझा हो?
नहीं, नहीं तो इन एंड आउट हो रही थी इसलिए मेरे को नहीं है क्वेश्चंस।
ओके 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 ठीक है। अब हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं कि आश्रव क्या चीज है। सबसे पहले तो आश्रव, दिस वर्ड इज आ प्लस श्रव, श्रव यानी कि श्रवना, इट्स लाइक इनफ्लो, एक इन्फ्लक्स हो रहा है हमारे अंदर, कुछ कर्म अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, आत्मा के अंदर। तो कर्मों का आना ही आश्रव कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आत्मा, जैसे कि भाई आज क्यों कि मेरे या जो जितना ही पूरी हमारे आसपास स्पेस दिख रहा है, स्पेस में कहीं पर रस्सी को बांध सकते हैं, कैन वी टाई अ नॉट इन द प्लेन स्पेस, कैन वी? आप यदि बोले कि यहाँ पर ऊपर जितनी जगह दिख रही है खाली खाली, इस पर एक रस्सी बांध दीजिए, कैन यू टाई अ नॉट यहाँ पर?
नहीं।
क्यों, कारण क्या है?
वहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ कैसे बांध सकते, उसका आधार तो कुछ?
अरे खाली आकाश तो है, लेकिन आकाश एक द्रव्य है, आप उससे बांध दीजिए। धर्म द्रव्य भी है उस जगह पर, अधर्म द्रव्य भी है।
हाँ,
तो नहीं बात। हाँ? हाँ, चाहिए पहुंचने के लिए, तो वो तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ तो, पहुंच नहीं सकते ना?
नहीं, पहुंच कहाँ पहुंचना, ऊपर कहीं नहीं पहुंचना है। आपका हाथ जहाँ तक जा रहा है ना खाली जगह पर, आप जैसे आपने अपना हाथ ऊपर किया तो आपने किसको पकड़ा? आपने कुछ नहीं पकड़ा, आपके हाथ से कुछ भी नहीं आया ना, ऊपर से प्लेन आकाश है, स्पेस है, एकदम खाली है। बराबर,
बराबर।
इधर पर आपको एक रस्सी बांधनी है तो आप रस्सी बांध सकते हैं क्या?
नहीं,
ऊपर नहीं बांध सकते।
क्यों नहीं बांध सकते? ठीक है, साइड में बांध दीजिए, साइड में जहाँ जगह खाली है वहां पर बांध दीजिए।
खंबे से दूसरे खंबे तक पहुंच सकते हैं?
नहीं, खंबा खंबा कुछ भी नहीं है, आपको बस रस्सी बांधनी है खाली जगह में।
खाली रस्सी अपने हाथ में तो अपने ऊपर ही लगा दो।
तो मतलब हम स्पेस में नहीं लगा सकते, करेक्ट? कारण क्या है इस चीज का, हमें खंबा या ऐसी कोई चीज क्यों चाहिए, हम आकाश में क्यों नहीं लगा सकते?
पुद्गल पुद्गल से ही बंधेगा।
करेक्ट एग्जैक्टली। तो फिर कर्म जो पुद्गल है वो आत्मा जो कि पुद्गल नहीं है, जो आकाश के जैसा है, उससे कैसे बन जाते हैं?
व्यवहार से बोलते हैं कि बंधा, परंतु वैसे लिटरली नहीं बंधा।
अच्छा, तो फिर आश्रफ की कहानी कैसे आई? फिर कर्म आ कहाँ पर रहे हैं? आत्मा के अंदर आ रहे हैं कर्म, आश्रफ मतलब
एक एक क्षेत्र में रह रहे हैं।
तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हमारे आगम का कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म कैसे बन सकते हैं, क्योंकि जगत में अमूर्तिक आकाश से मूर्तिक कोई वस्तु हम बांध नहीं पाते, हम चाहें तो भी हम नहीं बांध पाते। करेक्ट। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो आत्मा इनविजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उससे कर्म कैसे बंध जाते हैं? तो एक आंसर आया कि व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म बंध गए, लेकिन बनते नहीं है रियलिटी में। तो अभी हमारे पास कर्म बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं?
व्यवहार से बोल सकते हैं कि बंधे हैं।
अब मैं नहीं पूछ रहा क्या बोल सकते हैं कि क्या नहीं बोल सकते, पूछ रहा हूँ कि बंधे हैं कि नहीं बंधे।
बंधे हैं।
आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं कि नहीं? हाँ
और नहीं, आपकी आवाज नहीं आती थी, मैंने सोचा पता नहीं आप क्रॉप हो गए
कि नहीं। आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे?
आत्मा के साथ नहीं बंधे हुए।
हाँ।
तो इसको प्रवचन सारथी में गाथा 170 के आसपास जाएंगे, वहाँ पर पूरा विषय उठाया गया है आचार्य कुमकुम देव ने। राइट, 180 में आ जाता है जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से। उसके पहले की जो गाथाएं हैं अराउंड 167 से शब्द स्टार्ट हो जाती है, वहां पर पुद्गल का बंधना कैसे बनते हैं और आत्मा के साथ कैसे कर्म का बंध होता है, ये वाली सारी गाथाएं ली गई हैं।
आपने 170 बोली गाथा?
मैं प्रवचन सार की गाथा बोल रहा हूँ। 175 या 174 है शायद गाथा, जिसमें एग्जैक्टली उन्होंने बताया, टीका में उन्होंने एग्जांपल लिया है एक बैल का, मिट्टी का बैल और सही का बैल। आप लोगों ने कभी लाइक थोड़ा जिससे पढ़ा होगा उनको क्लिक करेगा। तो आई एम जस्ट आस्किंग कि आत्मा अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है। आत्मा के पास स्पर्श नाम का गुण नहीं है, कर्म के पास स्पर्श नाम का गुण है। आत्मा स्पर्श नाम के गुण के अभाव में बनता नहीं है। आत्मा कर्मों से कैसे बंधेगा? ये कौन सा साइंस है, कौन सा गणित है, कौन सा फिजिक्स है जिसके तहत एक अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक वस्तु के साथ बंध जाती है? वो कौन सा एडहेसिव है जिससे कर्म आत्मा में चिपक जाते हैं? तो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने उसका आंसर दिया है बहुत सिंपली तरीके से, मन वच काय त्रयोगा। आई डोंट नो आप लोग वहां पर कभी किया नहीं क्या आप लोगों ने? हम लोग यहाँ पर क्या करते थे बचपन में, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग करते थे ये। So when we were in school, we were small. What we used to do, we used to, you know, make small pieces of the paper. Paper ke chote chote tukde kar lete the. And then we used to have those scales. Aur scales mein, aur mummy ghar par se bahut tel laga kar bhejti thi baalon par. Right? So what we used to do, we used to rub the scale with our hair. Wo charge jata tha. And hum scale ko chote chote kagaz ke tukdon ke upar le jate the. And what used to happen, वो कागज के टुकड़े उस स्केल के ऊपर उड़ उड़ के चिपकते थे। Anybody tried this ever?
हाँ हाँ।
Pass we had done।
तब
हाँ, वो static electricity के हिसाब से वो।
हाँ हाँ। So I'm asking, sorry, करी क्या?
आप तो oil के हिसाब से चिपक जाते हैं ना?
हाँ 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 हाँ, correct। सो आई एम आस्किंग कि ये चिपकते क्यों है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, लाइक
चिकास है, चिकास के कारण से एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
तो यदि मैं पूरे स्केल में ऑयल लगाऊंगा और फिर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा पेपर के, तो फिर वो चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे?
पूछो फिर से पूछे।
यदि मैं ऑयल को अपने बालों में नहीं रब करता हूँ, मैं स्केल लेता हूँ और मैं स्केल की उंगलियों से उसमें ऑयल लगा देता हूँ, ठीक है, हल्का हल्का, एंड अब मैं स्केल को उसके ऊपर लेके जाता हूँ, अब वो चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे?
उंगली पर चिपक गया, नहीं वैसा पूछ रहे क्या?
स्केल पर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे?
पर स्किन पर ऑयल होगा तो चिपक जाएगा।
ओके सी, हम लोग उसको अकेली तेल नहीं लगाते थे, हम लोग उसको चार्ज करते थे। अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होती है,
वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
करेक्ट। सो दिस इज लाइक, एक हम इसमें जब हम किसी चीज को चार्ज कर देते हैं तो उस चीज में एक अट्रैक्शन की पावर, इट इज चार्ज्ड नाउ, तो अब वो पेपर नीचे भी रखे रहेंगे, उसमें ऊपर आके पेपर चिपक जाएंगे, करेक्ट? ये ऐसा कब हो पाया? व्हेन यू, आपने उसको पेपर को अकेली, आपने उसमें तेल नहीं लगाया है, आपने उसको अपने बालों में स्केल को आगे पीछे से रब किया है, तो रब किया है तो इट गॉट चार्ज्ड, करेक्ट? ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट में भी करंट फ्लो होता है तो वो चार्ज होती है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी उसको दी, इट विल अट्रैक्ट द मेटल, द मोमेंट यू स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी वो छोड़ देगा उस मेटल को, बंद हो जाएगी, राइट करेक्ट? तो एवरीथिंग इज चार्ज, जब हम किसी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन की पावर आ जाती है, करेक्ट? अब जेनिसन का साइंस कहते हैं, 175 गाथा में तो आचार्य कुंकुंदे तो कुछ और बताना है, वहां तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, वहां पर ये बोलते हैं कि आत्मा जिस प्रकार अरूपी आत्मा रूपी वस्तुओं को जानता देखता है, आत्मा के पास रूप नहीं है, खुद अरूपी है, करेक्ट? फिर भी आत्मा खुद तो दिखता नहीं लेकिन रूपी वस्तुओं को देख लेता है, बराबर? उसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा जिसके पास स्पर्श नहीं है पर स्पर्श वाली वस्तुओं से बंध भी जाता है, ऐसा वहां पर, तो वहां पर सिंपल कुंकुमाचार्य देव ने लिखा, जिस प्रकार आत्मा रूपी वस्तुओं को जानता है उस प्रकार आत्मा उनसे बंध भी जाता है। तो उसकी टीका पर अमृतचंद्राचार्य देव ने थोड़ा खोला, उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम नॉर्मल साइंस समझ लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास तीन योग है जो हमें निमित्त रूप में मिले हुए हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। हम सब संगी पंचेंद्रिय, दैट्स व्हाई वी हैव मन, राइट? यदि हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय होते तो हमारे पास, यदि एक इंद्रिय होते तो सिर्फ काय होती, सिर्फ शरीर होता, यदि हम दो इंद्रिय होते तो हमारे पास रसना इंद्रिय भी आ जाती, हमारे पास शब्द भी आ जाते, वचन योग आ जाता, करेक्ट? और हम जब पंचेंद्रिय संगी बने तो हमारे पास मन योग भी आ जाता है, करेक्ट? ये तीन प्रकार के योग होते हैं, ये योग बाहर में इनकी मशीन्स लगी हुई है और अंदर में हमारे पास इनको करने की योग्यता है। तो आपके हार्ट के अंदर जाकर एक मन है छोटा सा, जब वो मन है वो इंस्टॉल्ड एक मशीन है आपके पास, एट द सेम टाइम आपके पास इतना ज्ञानावर्णी कर्म के उदय का उघाड़ है कि आप उस मशीन का यूज कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, तो आपके पास भाव मन है, करेक्ट? दो अलग अलग चीजें, एक बॉडी में इंस्टॉल्ड आपके पास पूरा क्या बोलते हैं इसको, जो आपके गले पे लगते हैं, तो क्या बोलते हैं, कॉर्ड, वॉइस कॉर्ड है, ठीक है, आप बोल सकते हो, ऐसा आपके गले में ताकत है, करेक्ट? एट द सेम टाइम आपकी आत्मा में भी योग्यता है कि वो बोलने के परिणाम कर पाए, वो भाषाओं को सीख पाए, वो इस वोकल कॉर्ड को कैसे चलाना है उस हिसाब से समझ पाए, वो बच्चा धीरे धीरे कैसे सीख लेता है बोलना, बिकॉज ही हैज द कैपेबिलिटी। तो तीनों काम साथ में हो रहे हैं, बाहर में वी हैव एक्सटर्नल मशीन्स एक्सटर्नल फैसिलिटीज वी हैव दिस बॉडी कायो वी हैव दिस साउंड कॉर्ड वी कैन से हमारा वचन योग एंड वी हैव दिस मन बाहर का द्रव्य मन ठीक है बॉडी में बाहर ही इंस्टॉलेशन है इसी के साथ अंदर भी आत्मा में कुछ इंस्टॉलेशन है वो विद इन हमारे खुद के आत्मा के हैं जैसे कि मन के लिए भाव मन वचन के लिए वो वचन को बनाने की विधि और काय के लिए आत्मा को जैसे कि हम लिख लेते हैं हम चल लेते हैं हम दौड़ लेते हैं राइट हम लेट लेते हैं सो वी आर डूइंग वी आर टेकिंग वर्क फ्रॉम लाइक वी कैन च्यू वी कैन ईट तो हमको ये सब पता है तो कैसे पता क्योंकि हमारे पास इस काया को भी चलाने का विवेक पूर्वक चलाने का एक मैकेनिज्म है अंदर बराबर ठीक है तीन चीज हो गई तीन योग मन वच काय त्रयोग तीन योग है ठीक है नाउ अब लाइक मेरे पास मन है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ पर मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं आगे क्या करना है अभी मुझे क्लास के बाद क्या करना है ठीक है तो वो मैं कहाँ पर सोच रहा हूँ आपको तो नहीं पता पड़ रहा आपको तो लग रहा है आई एम टेकिंग योर क्लास बट मैं मन में कुछ और सोच रहा हूँ सो व्हाट एम आई थिंकिंग हेलो विद आउट ऑफ मन वचन एंड काया मैं किस किस का आलंबन लेके सोच रहा हूँ मन का वचन का काया का
मन का
यू कैन नॉट सी राइट यदि आपको जानना है मन में क्या सोच रहा हूँ आपको मन में परे ज्ञान लेना पड़ेगा विदाउट मन में परे ज्ञान यू कैन नॉट सी इन टू माई मन करेक्ट यस और नो ठीक है हाँ सो नाउ व्हाट विल हैपन जब मैंने एक थॉट किया कोई भी थॉट कि अभी मुझे इसके बाद मे बी आपके एग्जाम की तैयारी करनी है ठीक है तो ना जिस थॉट जैसे ही थॉट अंदर हुआ आत्मा से उसी समय क्या होगा आत्मा के प्रवेशों में कंपन स्टार्ट हो जाएगा आपने सुना है कंपन वाइब्रेशन वाइब्रेशन मतलब एक रोटेशन स्टार्ट होगा आपकी आत्मा के प्रवेश घूमने लगेंगे
ओके
ठीक है आत्मा के प्रवेश घूमते हैं तो इट इज काइंड ऑफ एक स्पेशल अट्रैक्शन एक एनर्जी पैदा होती है जैसे कि जगत में कोई चीज बहुत तेज गोलगोल हम घुमाते हैं तो उसके पास एक अट्रैक्शन पैदा होता है करेक्ट चीजों के पास अट्रैक्ट होने लगती है आजू बाजू की जैसे हमने एकदम बहुत मोटे एग्जाम्पल के रूप में देखा कि मैंने स्केल को चार्ज किया जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो पहले हमने उसको स्क्रैप किया था उसको हमने अपने बालों में रब करके चार्ज किया था तो आगे पीछे ऐसा हमने उसको चार्ज किया था घुमाकर करेक्ट तो सिमिलरली जैसे लोक में कोई चीज राउंड करती है वो कुछ चार्ज हो जाती है तो वो आसपास की चीजों को फिर अट्रैक्ट करने लगती है सिमिलरली सेम मैकेनिज्म फॉर आश्रम आश्रम क्या कहता है जैसे ही आत्मा कोई परिणाम इन तीनों योगों के आलंबन में से किसी भी एक योग के आलंबन से करता है द मोमेंट ही डज इट उसी समय आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वो घूमते हैं द मोमेंट वो कंपन होगा तो लोक में कर्म वर्गणाएं हर जगह बिछी हुई है देयर इज कार्मिक डस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है तो आप जहां कहीं भी होगे और जहां कहीं भी आपने मन वचन काय का उपयोग लिया आधार लिया उसी समय क्या होगा आपके प्रदेशों में भी कंपन होगा ये सुनो हेलो
हाँ जी
और जैसे ही आपके प्रदेशों में कंपन होगा आत्मा के प्रदेश आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश उसी समय आसपास की कार्बिक डस्ट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर सोल इट्स एन एनर्जी इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप जब तक परिणाम करते हो तब तक कर्म आपके पास आते हैं द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दोस परिणाम कर्म विल स्टॉप कमिंग टू यू अंडरस्टूड
लास्ट सेंटेंस
पक्का
नहीं लास्ट सेंटेंस फिर से कहेंगे जो लास्ट सेंटेंस
ये बोला मैंने जैसे कि लोक में कुछ चीज चार्ज हो जाती है तो वो अट्रैक्ट होती है. ऐसे ही आत्मा के प्रवेश जब घूमते हैं, जब नहीं घूमते हैं तब वो मैग्नेट नहीं बनती. वो मैग्नेट नहीं बनती तो कर्म नहीं आते. देखिए अरिहंत भगवान, उनके पास योग है तेरहवें गुण स्थान में, तो वो जैसे ही दिव्य ध्वनि उनकी छिड़ती है या उनका गमन होता है या फिर वो बैठे हुए भी है, राइट, उनके योगों का व्यापार चालू है. योगों का व्यापार चालू है तो क्या होता है, उनकी आत्मा में भी प्रदेशों का कंपन चालू है, राइट, इट हैज नॉट येट स्टॉप्ड. एंड सिंस इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है, तो अरिहंत भगवान के भी कर्म आते हैं. बराबर. इसको कौन सा आश्रम बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं इरियापथ आश्रम. एग्जैक्टली, इरियापथ आश्रम. लेकिन अरिहंत भगवान की क्या गलती है, ही इज कम्प्लीटली वितरागी, ही इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ राग, एनी काइंड ऑफ द्वेष. व्हाई नाउ द कर्मास आर कमिंग टू हिम,
वो प्रदेशों का कंपन होता है
उसमें. तो कर्म कोई उनको मजा नहीं आता है हमारे पास आने के लिए. Why do they come? It's a normal physics. आत्मा के प्रदेश जब भी कप जैसे कि मैग्नेट होती है, मैग्नेट वो अकेले लोहे को क्यों अपने पास बुलाती है? Why not plastic? Why does it not attract the plastic or wood? Why only iron it attracts?
बस वो उसका स्वभाव ऐसा बोलते
हैं. Right? वो सिर्फ लोहे को ही बुलाती है. आप उसको लकड़ी में लगाओगे वो नहीं लगेगी, प्लास्टिक में नहीं लगेगी, करेक्ट? देयर इज नो, वी कैन नॉट क्वेश्चन कि क्यों ऐसी पार्शियलिटी, क्यों मैग्नेट आप लकड़ी में क्यों नहीं लगते, बिकॉज इट्स नॉट विथ नेचर. सिमिलरली आत्मा जब अपने प्रदेशों में कंपन, मतलब इसके प्रदेश रोटेट होते हैं, चार्ज होते हैं, तब सिर्फ कर्म वर्जनाएं आत्मा से आके चिपकती है. दिस इज द मैग्नेट फॉर कर्म वर्जना एंड दैट टू एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट. मतलब आप जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे, प्रवेश में कंपन नहीं करोगे, इट विल नॉट कम. राइट. तो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि श्री ओम सर्वांग से श्री, सर्वांग से श्री मतलब योग का व्यापार है कि नहीं है, वचन योग का व्यापार है कि नहीं है?
है.
बॉडी से तो दे ही रहे हैं, सर्वांग से श्री तो का ही योग भी है. तो क्या होगा, जैसे ही होगा उनकी आत्मा में कंपन होगा, आत्मा में कंपन होगा तो क्या होगा, आजू बाजू के जितने कर्म है वो आके उनसे चिपक जाएंगे. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, तो क्या अरिहंत भगवान को बंद होता है?
एक समय का,
करेक्ट. और बंद को हम बंद जैसा नहीं कह सकते, इट्स लाइक कर्म यहाँ से आएगा और पीछे वाले गेट से निकल जाएगा और बीच में तो किसी को हाय हेलो कुछ भी नहीं बोलना है. इट्स सिंपल, वन कर्म कम, इट कम्स एंड सडनली गोज. हेलो,
तो बंधते नहीं है,
कौन सा आश्रम है?
अरिहंत भगवान के बंधते नहीं है, आते ही है और फिर जाते.
मतलब आते हैं, आके पास होंगे तो पास होने में एक समय लग जाता है, राइट? आएंगे और यहाँ से आगे वाले गेट से उसे पीछे वाले गेट से उनको सीधे थ्रू होना है, बट ये आगे से पीछे वाले गेट के बीच का जो रास्ता है इसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक समय लगता है. ये जो एक समय है इसको आगम की भाषा में बंद कह देते हैं. अरिहंत भगवान को बंद है कि नहीं है, कि हाँ उनको एक समय का बंद है, इरियापथ आश्रम है. लेकिन एक समय का बंद ये बंद नहीं कहलाता, क्योंकि कर्म तो रुके ही नहीं. जब रुके नहीं तो उदय देने नहीं आएंगे, तो ऐसे कौन से कर्म आए थे, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट, राइट. सो द फर्स्ट मैकेनिज्म बंद को कैसे स्टार्ट होता है, आपकी आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना चाहिए. इसलिए आपको पता होगा, लाइक लास्ट टाइम भी हमने वो भजन लिया था, काहे को सोचत अति भारी, राइट? हम बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं. सोचते रहते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मनोयोग से काम ले रहे हैं. मनोयोग से काम ले रहे हैं तो निश्चित क्या हो रहा होगा, आपके आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन हो रहा होगा. वाइब्रेशन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, अननेसेसरी, जहाँ की जरूरत नहीं थी वहां पर भी हम कर्मों का बंद कर रहे हैं। एंड आप जितना, जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं नॉर्मली तो आत्मा के प्रदेशों में कम कंपन हो रहा है। इफ आई एम रनिंग, कायोग का ज्यादा प्रयोग है, ज्यादा कंपन हो रहा है। इफ आई एम सिटिंग, कम। इफ आई एम डांसिंग एंड यूजिंग द बॉडी सो मच, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यू नो लोकप्रिय हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा नहीं बोला करते, हम लोग को आराम से शांतता से चलना चाहिए, हाथ पैर इधर मत हिलाओ, बैठे बैठे आप पैर मत हिलाया करो, नहीं बोलते हैं। लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर को हिलाते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रोड पे जा रहे हैं तो तेज तेज गाने लगेंगे या फिर कुछ भी अपने आप से बोलने लगेंगे, राइट। और मन में तो हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं हमेशा, कभी ना कभी हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे ये ख्याली पुलाव इतने ज्यादा बन जाते हैं लंबे चौड़े, बैठे बैठे कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग थे स्कूल में थे तो एग्जाम की तैयारी करते करते सोच लगते थे यार मैं स्कूल टॉप कर लूंगा, नहीं मैं एक्चुअली स्टेट टॉप करूंगा, नो 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 आई टॉप द कंट्री, उसको करना अपना सेक्शन भी टॉप नहीं है। ओके, बट जो ख्याली पुलाव और हम जितना सोचते हैं उसका पेस कितना हाई होता है, हम बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हैं, ये हम सबके साथ होता है। बट ये सब अनर्थ दंड में आता है, क्यों? बिकॉज देर वॉज नो नेसेसिटी। आप बैठे बैठे अपना पैर हिला रहे थे, आप चाहते तो आराम से बैठते, तो आत्मा के प्रदेशों में उतना कंपन कम होता एंड उतने कम क्वांटिटी में फिर आपके पास।
परंतु मन 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 में कैसे वो कंट्रोल, क्योंकि मन तो भागता ही है हमेशा वहाँ वहाँ।
हाँ, तो मन को बंदर की, ऊंट की, कितनी सारी अलग अलग उपाय दी है हमारे ग्रंथों में।
हाँ।
मन को ही तो वश में करना है, और किसको वश में करना है, मन को ही तो वश में करना है। नासाग्र दृष्टि हमारे मुनिराजों की क्यों होती है, वो वशीकरण के लिए होती है, वो कंसेंट्रेट करते हैं, राइट। बहुत सारी युक्तियों से, बहुत सारे तत्व विचार से मन को प्रशिक्षित किया जाता है, मन को ट्रेन किया जाता है। ये छोटी मोटी ऐसा नहीं कि अपना चार पांच सीख ली तो हमको आने लगेगा, ये अभ्यास का काम है। जैसे कि बच्चे को जब लिखना सीखना होता है तो वो कितना सारी प्रैक्टिस करता है, इतनी सारी लाइंस लिखता है बार बार बराबर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग थ्योरी तो पूरी पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिकल। सो वी नो के मन को वश में करना है, बट कैसे करना है वी आर नॉट इवन ट्राइंग। और ये आर्ट है जो मुनिराजों को भी बहुत मेहनत करके आती है। तो हम सब तो घर में पड़े हुए हैं, इतनी सारी उलझनों से बंधे हुए हैं, और हम चाहें कि हम अकेले पढ़ लेंगे कि मन को वश में करो और मन वश में हो जाएगा, इट डजंट हैपन। हमको सबसे पहले एक कमरे के अंदर जाके अपने आप को लॉक करना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा पहले तो अकेले के, अकेले में क्या सोचा जाता है, अकेले में क्या किया जाता है। यू हैव टू सक्लूड अवर सेल्फ एंड देन मन धीरे धीरे ट्रेन होगा।
मन तो कमरे के बाहर
ही भटक गया है वो तो, ये तो मन तो कमरे के बाहर ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
शरीर अंदर रहता है।
अब अभ्यास के लिए हमको जब हम बैठते हैं तो तत्व विचार में एकाग्रता होती है, राइट। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कर्णानुयोग के अभ्यास से ज्ञानवर्णी कर्म का क्षयोपशम, मतलब ज्ञानवर्णी कर्म का उघाड़ कम होता है और अपन को ज्ञान का उघाड़ बढ़ता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम मैथ्स या कुछ पढ़ते हैं तो हम किसी से राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, मन का ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम प्योर ब्रेन का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर, करेक्ट। तो 2+2 या 7×12 में करूंगा और मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, 12×12 कितना होगा, ऐसे किया मैंने। In all this process, I am not doing any kind of raag or dvesh as such. हाँ, मैं थोड़ा यहाँ पर पढ़ाई का होमवर्क कर रहा हूँ, थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी दिल की बातें होंगी, ठीक है। But what I am essentially doing, मैं क्या कर क्या रहा हूँ वहाँ पर, मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। उस टाइम आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी वन, I'm not thinking good for anyone. I'm not thinking bad for anyone. तो इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है जब हम ऐसे शांत चित्त के बनते और इधर उधर सोचना भी बंद कर देते हैं इधर उधर का, सिर्फ तो विचार में चित्त लगाते हैं, तो कितना फर्क आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है? हेलो,
हाँ हाँ
समझ में तो आ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिकल करना हार्ड है, ये
बहुत हार्ड है।
बहुत
लोगों को इतनी मेहनत,
बोलना
तो
इजी है, बताना इजी है,
बहुत इजी है, बताना बहुत इजी है, पढ़ाना बहुत इजी है,
लेकिन करना
बहुत इजी है। लेकिन ऐसे करने के लिए बैठना, अकलक से अकेले जाकर बैठना, सामायिक, आप तो सामायिक को ही देख लीजिए, हम सामायिक करते हैं आधा घंटे का, उसमें हमारा उपयोग भटक जाता है। आप उसको छोड़ दीजिए, 9 बार नमो कार मंत्र हम पढ़ते हैं, वो 9 बार नमो कार मंत्र पढ़ने में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगते होंगे, एंड इवन इन दो लाइक थोड़े से 120 सेकेंड्स, लेट्स से वी टेक इट, उसमें में हम रमोकार मंत्र पढ़ते रहते हैं, हम उसमें स्टेप नहीं भूलते, एट द सेम टाइम हम पूरा सोच के जाते आगे की पूरी प्लानिंग होती क्या करना है क्या नहीं करना है।
हाँ, हाँ, जब हम सुबह पूजा भी करते हैं तो भी कई दफा मन तो कहाँ पता नहीं, कई दफा फिर वापस ले आते हैं। अच्छा, मगर ऐसा है कि लाउडली बोलो तो मन कम भागता है,
जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वो मन सभी रहेगा, हम उसको जितने ज्यादा छूट देंगे, जितने ज्यादा रिलीज करेंगे हम उसको, उतना ही हमें परेशान होना पड़ेगा यहाँ पर।
तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना?
ओके, इसके लिए शतखंडागम में आचार्य पुष्पदन देव ने, सॉरी उसकी जो टीका है धर्मा टीका, उसमें 3 पद्धतियां बताई, वहां पर उन्होंने देखी। सबसे पहले हम श्रीमद राजचंद्र जी का सिद्ध, उन्होंने वो मोक्ष माला करके एक छोटी सी किताब लिखी थी, श्रीमद राजचंद्र जी ने, आप सभी ने पढ़ी होगी आई
होप,
मोक्ष माला छोटे बच्चों की, उसमें चैप्टर या नोबार नवकार मंत्र पढ़ते हैं, वहां पर अलग अलग उन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें खंड बनाए हुए हैं, उसमें अरेंज अरेंज जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है, आपने कभी दोबारा उठाएगा तो पढ़ेगा। तो उसमें मन को एकाग्र करने के लिए कि मेरा उपयोग नहीं भटके वहां पर क्या करें, फर्स्ट थिंग आपका जो भी उपयोग चल रहा है वो तो आपको तत्व विचार में लगाना है, वहां पर हमें मन को देने में कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी हम या तत्व विचार करेंगे तो मन का काम होगा और मन का काम होगा तो फिर कर्म आएंगे, तत्व विचार में कर्म डरते हैं आने से, तो लाइक तत्व विचार की तरफ आपको डरना है नहीं। ओके, बट जैसे कि अब मैंने जब मैं 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ने बैठा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है,
एकदम क्लियर नहीं है, बीच बीच में नहीं, वर्ड पकड़ में नहीं आते हैं और आवाज भी थोड़ी लो है। अच्छा, वॉल्यूम मैंने तो बढ़ाया है अपनी ओर से तो भी।
ओके ओके, मैं थोड़ा तेज होने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मोक्षमाला बोल रहे हो तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर मोक्षमाला में इसको कैसे पढ़ना, तो फर्स्ट होता है आप क्रम से पढ़ो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तो जिसने पहली बार नमोकार मंत्र पढ़ा है उसके लिए क्रम से बोलना भी थोड़ा टफ रहेगा, तो हम जब भी कुछ नया नया सीखते हैं हमारा उपयोग उसमें विशेष लगता है, करेक्ट? फर्स्ट थिंग कि आपने सीख लिया एक बार, अब जब आप इसमें अभ्यासी हो गए, व्हेन यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी चीट करने लगती है, मतलब देखो अभी हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन कितना शार्प है, वो 2 पॉइंट्स हमेशा छोड़ता है, एक तो एक हमारा पॉइंट लगा रहता है कि हम 9 बार नमोकार मंत्र तो गलत नहीं बोल रहे, करेक्ट, हमें हमेशा पता पड़ता है कि हम पूरे 9 बार ही बोलते हैं और हम एक भी बार मिस नहीं करते कि मैंने नमो आईडी आडम छोड़ दिया, इस बार के नहीं छोड़ा है, राइट? हम घर के बारे में सोचते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव फुल कंसंट्रेशन ऑल्सो कि हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ हाँ. गलत होता है, टंग स्लिप होती है, हम उसको तुरंत करेक्ट भी कर लेते हैं. करेक्ट
हाँ.
करेक्ट. तो थोड़े टाइम में क्या हो जाता है, हमारा जो मन, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं. आप एक लाइन बोलोगे पूरी बोल दूंगा, मैं पूरी वो भी बोलता रहूंगा और मैं कुछ और सोचता भी रहूंगा जब मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलने हाँ. वाला मैं हूँ नहीं, बोलने हाँ. वाली बॉडी है. अब वो सीख चुकी है, इट हैज बीन प्रोग्राम्ड. क्योंकि यही प्रूफ करता है कि हम बोलने वाले नहीं है. यदि हम बोलने वाले होते तो फिर हमारा मन और कहीं नहीं जाता.
तो जब बोलते हैं तब आप जब की तरह पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, क्योंकि वो हमें याद है, कंठस्थ किया हुआ है. तो क्या है कि हम बोल तो सकते हैं, लेकिन मन जो है वो भागता रहता है चारों ओर.
वो तभी भागता है जब तक आपको याद हो गया है, जब आप उससे बहुत फेमिलियर हो. बट आपके पास वो नया नया रहेगा तो आप उसमें ध्यान लगाएंगे. तो उसने पहले बोला कि चलो आप पहली बार आपको नौ बार नमोकार्बन सीधा आता है, तो यही वाली ट्रिक श्रीमन राजचंद जी ने बताई. ये वाली ट्रिक धवला में है, उसमें इनके धवला में इनके प्राकृत में नाम दिए हुए हैं, उसमें मोक्षवाला में सरलता में बस बता दिया है. ठीक है, एकदम दो डेढ़ पेज का छोटा सा चैप्टर है ये. ओके, तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप जिस भी वस्तु का अभ्यास कर रहे हो, यदि आप उसमें नए हो तो कोई बात नहीं, आपका मन बिना सिखाए लग जाएगा कि आप पढ़ रहे हो. लेकिन यदि आप उस वस्तु में अभ्यासी हैं, तो पहले तो आपने एक तरीके का अभ्यास किया, और यदि अब आप यही करते रहे जिंदगी भर, इसमें कुछ इनोवेशन नहीं लेकर आए, तो थोड़े दिनों बाद ये अपने आप बॉडी करती रहेगी और आपका मन कहीं और अपना कुछ अलग काम करता रहेगा. तो उसके लिए अब हम क्या करें कि ठीक है, अभी आपको अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु आता है, अब आप ऐसी जाप मत दीजिए, अब आप उल्टी दीजिए, साधु उपाध्याय आचार्य सिद्ध अरिहंत. आज आप लोग नमो अरिहंताणम उल्टा पढ़िएगा नौ बार में. नमो लोई सब साहुणम, नमो उवच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम. नमो लोई सब साहुणम, नमो उवच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम. नमो लोई सब साहुणम, नमो उवच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम. राइट, आप जब उल्टा पढ़ेंगे आपको फिर आपका दिमाग इस तरीके में ट्रेन नहीं है, तो आपके मन को यहीं पर ही आना पड़ेगा जब तक बॉडी ट्रेन नहीं होती है.
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है.
करेक्ट. तो फर्स्ट वॉज सिक्वेंशियल, सेकेंड वॉज एंटी सिक्वेंशियल, मतलब आपको पहले आप ए से जेड तक जा रहे थे, अब जेड से ए तक आ रहे हो. ये दूसरा है, पहले आप पहले में क्या करो, आप पहले सीधा याद करो, सीधे याद होने में आप एकदम मास्टर हो गए हो. देन यू कम, यू लर्न द अपोजिट,
रिवर्स में.
ठीक है, रिवर्स में. अब थोड़े टाइम बाद आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है कि वो इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा. थोड़े दिनों बाद आपको इसमें भी विकल्प आने लगेंगे. वही हालत हो जाएगी जो नमो गार्मेंट्स में हुआ है. वो सही है, वो हो ही, हम किसी भी चीज में वो हो ही जाता है. ठीक है, नाउ सो वी टेक द थर्ड क्वालिटी. जो थर्ड है ये थोड़ा टफ है, ये करेंगे आप तो इसमें मन का ट्रेन होना बहुत टफ हो जाता है. अब क्या करना है आपको, एक बार में आप सीधा सिक्वेंस किया, एक बार में उल्टा सिक्वेंस किया. करेक्ट. हेलो. अब थर्ड टाइम जो होगा, थर्ड टाइम वुड बी रेंडम पिकिंग. आपको कहीं से भी उठाना है बट कंप्लीट करना है. इसमें कंडीशन ये है कि जो आप एक बार बोल चुके हो दैट शुड नॉट बी रिपीटेड. तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने रेंडमली बोल दिया है दैट डज नॉट कम अगेन एक बार के सेट में, एंड आई स्पीक ऑल ऑफ देम. नाउ इट इज कम, नमो आयरियाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो सिद्धाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो अरिहंताणम. सो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप नमो सिद्धाणम दो बार बोल दीजिए. और अभी नमोकार मंत्र में सिर्फ पांच पद हैं, आप इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम यदि आप ट्राई करेंगे इसमें, तो यू हैव टू स्पीक ऑल द 24 नेम्स नॉट इन सिक्वेंस, in any sequence and you have to not miss out. You do not have to repeat even a single name. तो आप जब एक बोल रहे हो तब आपको बाकी के पीछे आपने कितने बोल दिए उतने को याद रखने के ये हो गए हैं और आगे के कितने हुए ये नहीं हुए हैं. तो आपके अब दिमाग के पास बहुत सारे काम हो गए. It has to first think about the name that has not been spoken. It has to keep in memory whatever has been spoken. And again, it has to keep in memory कि मुझे sequence में नहीं बोलना है. जितने numbers बढ़ते जाएंगे दिमाग का उतना काम फैलता जाएगा. रमोकार मंत्र में एक बार फिर भी शायद बहुत सरल जाए क्योंकि वहाँ पर पांच पद है. तो फिर इसमें लेवल पता है
नॉट टू बैड वी कैन ट्राई मगर वो 24 तो मुझे तो इम्पॉसिबल
24 इज वो बट देन उसमें बोला कि पांच प्रकार के रमोकार मंत्र के पांच पद भी है ना लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो उसमें वो बोलेंगे ठीक है आप रमो अरिहंताड़म में रमो अरि देन सिद्धाड़म देन हंताड़म अलग बोलिए. सो यू ब्रेक इट डाउन. आप इसके भी पार्टीशन कर दीजिए एक पद के छोड़ दीजिए एंड ये एक एक अक्षर के लेवल तक जाता है. ड सी था रम लो ए एंड नाउ यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग क्या बोल दिया है क्या नहीं बोला है. ये सारे तरीके सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा दिमाग इंस्टेड ऑफ गोइंग इन राग एंड द्वेष वो इस गणित में लगे क्योंकि गणित है दिस इज मैथमेटिक्स नाउ. इससे उपयोग निर्मल होता है. आपकी परिणति में राग द्वेष का प्रादुर्भाव नहीं होता है वो आते नहीं है और वो नहीं आते हैं तो हमारी बुद्धि अपने आप निर्मल होने लगती है. सिंपल है. जब आप जिन चीजों को भूलना होता है उन चीजों में आप कंसंट्रेशन कर पाते हो फिर बात की बात आएगी कि आप जिन चीजों को बोला नहीं जाता ऐसा स्वरूप हमारा ऐसा हमारा तत्व वस्तु का विचार इस पर फिर आपका उपयोग लगेगा. ये हम बहुत बाहर से हम उपयोग को लगाना ट्रेन कर रहे हैं दिमाग को हम मन को वश में कर रहे हैं. ये बहुत एक्सटर्नल लेवल है ये बहुत बाहर से किया गया काम है. तो हम बाहर से फिर धीरे धीरे अंदर की चीजों पे आएंगे. आप एक बार मन को नियंत्रण में करना सीख जाओगे फिर यू नो लाइफ कुछ अलग ही होती है. अंदर की विशुद्धि अंदर का धैर्य बहुत अलग हो जाता है.
तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे दिस वीक में उस बार नेक्स्ट वीक बताएंगे कितना हुआ.
हमको तो देखो जैसे पंडित टोडरमल जी का शब्द याद करना है कि जिस जिस प्रकार से हमें राग द्वेष को नहीं जैसे भी हो राग द्वेष नहीं करना है. दिस इज द एम. प्रारंभिक भूमिका में हम आत्मा में तो सीधे नहीं डूब जाएंगे बराबर ऐसे तो नहीं होता. चौथे गुण स्थान में भी आए तो वहां पर भी विशुद्धि इतनी नहीं होती छह महीने में एक आध बार राइट करेक्ट. तो उसमें तो फिर हम राग द्वेष से घिरे हुए हैं. सो नाउ इफ आई देयर नॉट गोइंग able to go to Atma, तो हम वीतरागी उस समय शुद्धोपयोग में तो नहीं जा रहे. तो फिर क्यों नहीं कुछ ऐसी ट्रिक्स की जाए जिसमें राग द्वेष नेग्लिजिबल होता है. उपयोग बाहर रहता है लेकिन राग द्वेष नेग्लिजिबल होता है. तो उसके लिए पता है ये कब तक चलता है ये धर्म ध्यान में इवन शुक्ल ध्यान में. आप शुक्ल ध्यान के प्रकार पढ़ोगे बराबर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती राइट उसमें आखिरी तक जाकर विचार चलते हैं. क्योंकि वहां पर उपयोग में जैसे तैसे धर्म ध्यान में तो सामने विचार है ही वो तो विकल्पात्मक ही है. धर्म ध्यान तो उसमें शुद्ध उपयोग नहीं है करेक्ट. लेकिन आखिरी तक हमारे तत्व का लोक का विचार चलता है कर्म का विचार चलता है अवस्था का विचार चलता है. क्यों क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि इसका विचार करते हैं तो राग द्वेष का कुछ प्रसंग नहीं मिलता. जैसे कि हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार 1000 के ऊपर की गिनतियां जो होती वो सुंदर होती कि उसके नीचे की होती है. आई लाइक 45,677 दिस इज माई फेवरेट नंबर व्हाट इज योर्स. कि नंबर्स को फेवरेट बनाकर क्या करना. आप लकी नंबर बोल सकते हो लेकिन ये वाला नंबर फेवरेट है मेरा व्हाट doesn't make sense. So in my numbers mein, vastu vyavastha mein, physics mein, hum favoritism nahi chala paate. Hum achha bura nahi kar paate. Achha bura nahi kar paate, isliye na hum kisi pe krodh karte hain, na hame kisi se mayachari hoti hai, na hame kisi baat ka us samay ghamand hota hai, na hame koi lobh hota hai. Aap charo kashay nahi kar rahe ho, aapke kashay bahut mand ho gaye. तो कर्म अपने आप फॉर्मेशन करने लगते हैं, ज्ञानावधि कर्म का नीचे नीचे सीधे दबते जाते हैं और ज्ञान का उघाट बढ़ता जाता है. बेसिक साइंस है. आई बात समझ में?
हाँ हाँ. परंतु वो जो जो लोग वैसे वो सुडोको वगैरह करते हैं तो फिर तो उनों से और हम ये वैसे करें तो फिर क्या
मतलब? नहीं समझा मैं.
पता वो जो मैथ पजल्स नहीं आते हैं कि सुडोको उसको बोलते हैं.
ओ पजल करेक्ट 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 करेक्ट. तो कोई पजल्स वगैरह करता है और कोई जैसे फिजिक्स में आगे पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, रिसर्च करते हैं, करेक्ट. उसमें और हम में क्या अंतर है? इसमें और हम में संस्कार का अंतर है. सी, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये वाली पढ़ाई मोक्ष मार्ग के संस्कार डालती है. एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और वो मैथ्स की पढ़ाई करता है, उसको मैथमेटिक्स के संस्कार पढ़ते हैं. एक साइंटिस्ट है, वो साइंस की पढ़ाई करता है, उसको साइंस के संस्कार पढ़ते हैं. तो यू नो विच एवर फील्ड ही विल बी गोइंग, ही विल एक्सेल इन दैट फील्ड.
हाँ, नहीं मैं वो पूछने वाली थी कि वो भी इतने वो उसमें फोकस होते हैं और हम यहाँ ये माइंड ट्रेनिंग करे कि जैसे आपने बोला तो उसमें और हाँ, उसमें क्या फर्क होएगा फिर?
मैं वही बोल रहा हूँ संस्कार का. देखिए
संस्कार का. अच्छा
देखिए हम जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं
हमारा
मूलभूत नहीं होती.
ये ना है कि हमारा
क्या है पूर्णता के लक्ष्य से. करेक्ट. तो आप करना नियोग पढ़ोगे तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हुए जिन्होंने करना नियोग सिर्फ गणित को पढ़ने के लिए समझाने के लिए पढ़ा. उन्होंने पंडित टोडरमल जी जैसे करना नियोग नहीं पढ़ा. पंडित टोडरमल जी ने करना नियोग की इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं करी. गोमट सार की सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका उन्होंने करी. लब्धी सार छपना सार. आप इन टीकाओं को उठाएंगे तो यू नो लाइक आपको पता पड़ेगा कि क्या थे पंडित टोडरमल जी. पर जब आप मोक्षवार प्रकाशक पढ़ने आते हो जो कि इन टीकाओं को करने के बाद उसमें लिखा, आपको कहां से लगता है कि थोड़ा यदि मैं लिखता, यदि मुझे करना नियोग का बहुत सारा ज्ञान होता मैं लिखता तो मैं शायद थोड़ा शो ऑफ करता कि यार मुझसे ये भी आता है, सुनो ये होता है इसमें, ऐसा होता है, इसकी साइंस है, राइट? मैं थोड़ा वहां पर पुट डालता. बट आपने नौ अधिकार पढ़ लिए मोक्ष प्रकाशक के, बट उसमें कहीं भी विषय इतना सरल रखा गया कि एक नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है. गोमट सार वगैरह पढ़ने के लिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ने के लिए कितना दिमाग चाहिए? करें सुसी ये इससे क्या बताते हैं? उन्होंने जो गोमट सार पढ़ा वो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए पढ़ा, समझने के लिए पढ़ा. सी सो व्हाट ही वाज स्टडीइंग वाज मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स. बट उसका ध्येय कुछ और था जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में एकदम खुल के इट इज बीमिंग नाउ. आप पढ़ सकते हो कि यार पंडित जी कितने बड़े मोक्ष मार्गी थे, उनकी अंदर परिणति कितनी उज्ज्वल थी, वो आत्मा के लिए कितने सतत यू नो प्रयोगरत थे कि मुझे स्वरूप की उपलब्धि वृद्धि करनी, उपलब्धि तो हो गई है, वृद्धि करनी है. ये पता पड़ा. कैसे पता पड़ा? इससे ये पता पड़ा कि वो जब दूसरी भी चीजें पढ़ रहे थे उनके संस्कार वो कुछ और डाल रहे थे. तो आप ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानावरणी कर्म का उघाड़ उन्हीं का कम होता है जो लोग जैन होते हैं और जिनवाणी का अभ्यास करते हैं. नो, आप वर्ल्ड के ब्रिलियंट बच्चों को उठा के देखोगे शायद जैन बच्चे वहां आपको नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा. जितने भी आप अमेजिंग यू नो लाइक जिनके शोज में आ जाते हैं बच्चे जो अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज को शो करते हैं बच्चे, आप देखकर दंग रह जाओ. कोई बच्चा ये कर देता है वो कर देता है, उसके भी तो ज्ञानावरणी कर्म का वैसा उघाड़ सब कर पा रहा है ना.
बराबर.
बट वो ज्ञानावरणी कर्म का के लिए उघाड़ हो जाने से काम नहीं चलता. होगा आइंस्टाइन का बहुत ज्यादा आईक्यू तेज, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग के जब तक संस्कार नहीं पड़े हैं उसका वह तीव्र ज्ञान भविष्य के अल्प ज्ञान की ही रचना करता है. वो अभी तीव्र ज्ञान है, कल को वो दो इंद्री वगैरह में जाएगा तो इतना उघाड़ होगा उसका,
कम हो जाएगा,
नहीं रहेगा। तो ये वाला ज्ञान किस काम का जो एक पर्याय में तो इतने चरम पर पहुंचता है और अगली पर्याय में हमको एक इंद्री बना देता है, जहां हमें कोई जीव मानने को तैयार नहीं है, हम एकदम जड़। आग आग जीव है नहीं, आग तो बिल्कुल जैसे लकड़ी है, लकड़ी जीव है नहीं है, जमीन जीव है नहीं है, वो ज्ञान वाली वस्तु है। वो वाला हो सकता है कि उसके पास आइंस्टाइन जितना आईक्यू रहा हो भूतकाल में, लेकिन उसने उसमें मोक्ष मार्ग के केवल ज्ञान के संस्कार नहीं डाले, तो वो वाला ज्ञान कुछ काम नहीं है। हाँ, वो जब प्रैक्टिस करता था तो ये ज्ञान बढ़ता जाता था, क्योंकि उसका उस समय उस जाति का उपयोग निर्मल रहता था। इसलिए गणित का जो बच्चे अभ्यास करते, गधे से गधा बच्चा भी होगा, इफ ही इज प्रैक्टिसिंग मैथ वो ब्रिलियंट बन जाता है, हमें देखा हुआ है। खरे बच्चे कुछ नहीं करते, जो बच्चे बहुत वीक आपने देखे होंगे वो जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं वो सही में बहुत ब्रिलियंट हो जाते हैं। क्यों होता है ये? श्रीमद राजचंद जी ने लिखा कि आप जब अभ्यास करते हो तो आपका ज्ञानावरणी कर्म ये होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि आप जिस चीज के संस्कार डालोगे आप वो बन जाओगे। मुझसे पहले डांस नहीं आता होगा, आई विल जॉइन द डांस क्लासेस, मैं डांस सीख जाऊंगा। मुझसे म्यूजिक नहीं आता है, आई विल जॉइन द म्यूजिक क्लासेस, टाइम लगेगा मुझे, ठीक है मैं रियाज करूंगा, 5 साल लगे, 10 साल लगे, बट इफ आई एम वर्किंग ऑन इट आई लर्न इट, क्योंकि ज्ञानावरणी उस तरीके से परिमार्जित हो जाता है। बट ऑफ वॉट गुड इज दैट, वो किस यूज के लिए है? यदि एक भव के लिए तो किस काम का? ये जो चिन्वाणी के आपके संस्कार बनेंगे यहाँ पर, जो हम ये उपयोग की निर्मलता का अभ्यास कर रहे हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र के टाइम पर मुझे ध्यान लगाना है, मुझे उधर नहीं करना है, तो यहाँ पर आपका ध्येय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है। आपका ध्येय है कि देखो मैं 2 मिनट के लिए पंचपरमेश्वरी के स्वरूप के विचार में भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, स्वरूप के विचार में कैसे उतरूंगा?
हाँ, हाँ,
मैं जो बाहर दिख रही है,
हमारा फाइनल पर्पस क्या है?
फाइनल पर्पस हमें ये कि हम उपयोग लगा पाए, हम अपने उपयोग को सूक्ष्म कर पाए, ये उसकी बहुत एक्सटर्नल एक हैक है। हम हैक कर रहे हैं अपने मन को, उसको ऐसे हैक किया जाता है इंडल्ज करके। ये है ठीक है, तो उन दोनों में अंतर संस्कार का, इसलिए आप ऐसा मत देखना कि उन दोनों, उसका भी ज्ञान बढ़ता दिखेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ता दिखेगा, लेकिन उसका ज्ञान के साथ कुछ फ्यूचर नहीं है। आपके ज्ञान के साथ आपको वो वाले कर्म भी आ रहे हैं जो आपको अगले भव में ऐसी जिनवाणी लाके देंगे, इनका संयोग कराएंगे, आपको पंच परमेश्वरी का स्वरूप उनका संयोग अगले भव में भी मिलेगा, ऐसा होगा। देखो आपके पास, आपने कभी यहाँ पर संस्कार डाले होंगे तो आप यूएस में भी पहुंच गए, टाइम लगा, लेकिन वहां आपको मंदिर मिल गया ना, मंदिर आपका बन गया ना।
हाँ।
कैसे बना मंदिर? ये ऐसे ही नहीं बन गया है, ये बहुत सारी भावनाएं हुई, बहुत सारा आप लोगों ने पहले स्वाध्याय किया, आप लोग के मुमुक्षु संघ जुड़े और धीरे धीरे आपका मंडल बना, मंडल बना तो धीरे धीरे शक्ति हुई तो मंदिर बन गया। ये वाला संयोग कैसे आया? क्योंकि आपने वैसे संस्कार डाले। आप अभी कहीं भी चले जाइए विश्व के किसी भी पार्ट में, आप यदि वहां थोड़े टाइम रहेंगे, आई श्योर आई गारंटी वहां पर ये वाले संयोग चल के आपके पास आ जाएंगे, आप वहां मंदिर बना लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बिकॉज इट हैपेंस, क्योंकि हमारी भावना वैसी होती है। श्रीमद ने तो भावना पर कितना जोर दिया है, आत्म भावना भावना जीव लहे केवल ज्ञान रे। भावना रूट है, भावना से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। यदि ये भावना बाहर की विषयों की होती है तो बाहर में जड़ता प्राप्त की जाती है, आप विषय ही बन जाते हो। तो भावना से बाहर संसार में भी सब मिलता है और पारलौकिक में भी सब मिलता है। अब डिसाइड हमें ये करना है कि हमें भावना किसकी भानी है, हमें वैल्यू किसकी है, एक भव संबंधी विषय भोगों की या अनंत भव संबंधी निराकुलता की, वो हमें डिसाइड करना है।
बहुत बढ़िया,
राइट? तो सिंपल, इसके लिए वो वाला भजन में लास्ट टाइम देखा था, काहे को सोचत अति भारी, हम क्यों फालतू में अपने उपयोग को इतना सोचने में लगाते हैं?
अनुपति वो भजन आपने भेज दिया था सचिन जी को?
हाँ मैंने भेजा था सचिन जी को, व्हाट्सएप किया था मैंने उनको।
उन्होंने उन्होंने हमें भेजा नहीं है।
हाँ शायद वो भूल गए होंगे, बहुत बिजी है।
वो मैंने आपको एक व्हाट्सएप भजन किया था काहे को सोचे तति भारी, नहीं नहीं आया क्या आपके पास भी? दो सेकंड मैं चेक करता हूँ।
प्रवचन प्रवचन था वो जी?
नहीं 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 एक एक इमेज है, इमेज में वो भजन लिखा हुआ है, बस दो सेकंड में देखता हूँ मैंने। राइट एक इमेज थी काहे को सोचे तति भारी, तो भजन लिखा हुआ था
पूरब कर्मन। हाँ काहे को सोचे तभी,
हाँ पूरब कर्मन की तिथि बांधी, सो तो घटत ना काटी, काहे को सोचे तभी कोई बात।
हाँ जी हाँ जी
हाँ शेयर कर दीजिएगा वो।
हाँ जी हाँ जी श्योर। हाँ जी
पुराने भजन इतने सही से, एक बहुत रोमांटिक भजन है पंडित ज्ञानत राय जी का, आप लोगों ने नहीं सुना होगा शायद कभी। अब सुनिएगा पुराना पंडित ज्ञानत राय जी का भजन है, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, आत्मा को महबूब बोल रहे हैं ठीक है, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। बहुत गजब का भजन है, इसमें आत्मा के स्वरूप की चर्चा करी है। और पंडित ज्ञानत राम जी ज्ञानत राय जी कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया में सब कुछ देख लिया, मेरे आत्मा जितना सुंदर खूबसूरत और कोई नहीं है, तो मेरे लिए मेरा महबूब आत्मा ही है। बहुत पुराने पुराने गजब के भजन है, कर आत्म ही तेरे प्राणी कर। ज्ञानत राय जी ने तो इतनी प्रेरणा करी है, मतलब हम एक जगह उनकी पूजन पढ़ते ज्ञानत राय जी की, तो उन पूजनों में वो दीपक चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे उनके छंद कैसे होते हैं बराबर। मतलब ज्ञानत राय जी के जब आप आध्यात्मिक भजन पढ़ोगे, जैसे उन्होंने आरती भी लिखी है, जो आरती करी जाती है आजकल मंदिरों में, ये विधि आरती कीजिए बराबर, पंचपरमेश्वरी की आरती जो होती है अपन लोगों के यहाँ, तो वो भी ज्ञानत राय जी की लिखी हुई है। तो आपको लगा कितना व्यवहार का लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, बट आप जब उनके आध्यात्मिक भजनों को पढ़ेंगे, आत्म अनुभव करना रे भाई आत्म अनुभव करना, कर आत्म आत्म को क्यों नहीं जानत रे, इतना उन्होंने कोसा है हमको, फिर इतनी प्रेरणा करी है, फिर उन्होंने बोलते है कि आत्मा कितना सुंदर है, अरे एक बार देख तो लो। एक बहुत सुंदर सुंदर भजन है, मैं ये वाला भजन भी आज कर देता हूँ व्हाट्सएप, बहुत सुंदर, आप लोग पढ़िएगा इसको।
अब वो ऑनलाइन पे मिलेगा
ना ये अनुभव?
नहीं वो तो एक, लेकिन वो उसका कोई भजनावली या वैसा कोई है या ऐसे ऑनलाइन?
जयपुर से एक बुक छपी थी आध्यात्मिक भजन संग्रह, ब्लू कलर का उसका कवर, आई थिंक उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है उसमें सारे भजन नहीं है, मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी है मैं एक और बार चेक कर लेता, स्कैन कॉपी होगी तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ।
अच्छा अच्छा,
मैंने लास्ट टाइम जो स्कैन कॉपी मेरे पास थी उसमें आधी बुक थी, वो पूरी नहीं थी। मैं एक बार देख, ये आध्यात्मिक भजन संग्रह पुराने, इसमें पंडित ज्ञानत राय जी
नाम बोले आप, आध्यात्मिक
आध्यात्मिक भजन संग्रह,
संग्रह कदाच ओलाम हो जयपुर वाली लाइन में हे कदाच ने।
अनुभव जी आप ड्रॉप हो गए? सचिन भाई तमे छो? हाँ हूँ छू। अनुभव जी मैंने कॉन्फ्रेंस करी हो चामा तो देखा रहे थे, अनुभव जी आप हो? आई थिंक अनुभव जी फॉर व्हाट बट
अनुभव
जी आप
ड्रॉप थी गया से।
कलाक
જોઈએ નહીં, પોતાની જાતે જ આવે છે એટલે ડ્રોપ નહીં થયા હોય.
પોતાની જાતે આવે છે ને.
જીનવાણી બોલવી છે કે ચાવાણી કે ધ્યાન શ્રી સુજે લોકો સોવાણી મસ્તક નમે સદા દેતો હું તો નવનો કર્ણક આવશે.